नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। परमेश्वर ने हमसे किया यूं प्यार और चाहा कि पापों से ले उबार। प्रायश्चित स्वरूप अपना पुत्र दिया कि विश्वासी उसमें पाए क्षमा का उपहार। ज्योति आई है जग में कर्ण दूर अंधकार, पर उसे यहां नहीं किया गया स्वीकार। परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी, अंधकार से जोड़ा पर है जो कोई चलता, अंधेरे से ज्योति में है आता। सच्चाई पर है जो कोई चलता, अंधेरे से ज्योति में है आता। जिस छुपे ना रहे कारे उसके।
मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक का एक सबसे सुंदर विभाजन वंशावली के आधार पर किया जा सकता है, जो परिवारों के आधार पर है। यदि आप चाहें तो अपने डायरी या कॉपी में लिख सकते हैं। पहला है उत्पत्ति एक अध्याय से दो अध्याय के छह पद तक, जिसमें आकाश और पृथ्वी की सृष्टि का वर्णन है। दूसरा, उत्पत्ति दो अध्याय के सात पद से लेकर छह अध्याय के आठ पद तक, जिसमें आदम की पीढ़ी का वर्णन है। और तीसरा, उत्पत्ति छः अध्याय के नौ पद से लेकर नौ अध्याय के उनतीस पद तक है, और जिसमें नूह की वंशावली का वर्णन है। चौथा, उत्पत्ति दस अध्याय के एक पद से लेकर ग्यारह अध्याय के नौ पद तक है, और जिसमें हम नूह के पुत्रों के वंशावली का वर्णन पाते हैं। और पांचवा, उत्पत्ति 11 अध्याय का 10 पद से 26 पद तक, इसमें शेम के पुत्रों की वंशावली है। छठवां, उत्पत्ति 11 अध्याय के 27 पद से 25 अध्याय के 11 पद तक, जिसमें तेरह की वंशावली है। और सातवां, उत्पत्ति 25 अध्याय के 12 पद से लेकर 18 पद तक, इसमें इश्माएल की वंशावली है। आठवां, उत्पत्ति 25 अध्याय के 19 पद से लेकर 35 अध्याय के 29 पद तक, इसमें इसहाक की वंशावली है। नौवां, उत्पत्ति 36 अध्याय के 1 पद से लेकर 37 अध्याय के 1 पद तक, इसमें एसाव की वंशावली है। और दसवां, उत्पत्ति 37 अध्याय के 2 पद से लेकर 50 अध्याय के 26 पद तक, इसमें याकूब की वंशावली है। ये सब वंशावलियां हमें उत्पत्ति की पुस्तक में दिए गए हैं। यह एक पारिवारिक पुस्तक है। उत्पत्ति की पुस्तक एक अद्भुत पुस्तक है और यह पुस्तक हमें वंशावली के मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव जाति का उद्धार हो। और हर्ष की बात तो यह है कि परमेश्वर का उद्देश्य भी यही है कि मानव जाति का उद्धार हो, मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाए। और इसके लिए परमेश्वर ने उपाय भी किया है जो हमें इस पुस्तक के माध्यम से मिलता है। मित्रों, हमने अब तक इस पुस्तक को दो खंडों में विभाजित किया और उसके समय काल को भी देखा और यह भी देखा कि इस पुस्तक की विशेषता क्या है जो अन्य पुस्तकों में नहीं मिल सकता। हमने इस पुस्तक के दो मुख्य भागों को देखा, लेकिन अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति की पुस्तक की रूपरेखा पर थोड़ा समय देंगे। इसके दो मुख्य खंड हैं जो हमने पहले देखे हैं, वे वैसे ही रहेंगे, परंतु हम उस मुख्य खंड के अंतर्गत और छोटे छोटे खंडों को देखेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक की रूपरेखा देखें ताकि हमारे लिए इस पुस्तक को पढ़ना और अध्ययन करना सरल हो जाए। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक की रूपरेखा देखें, लेकिन इससे पहले यदि आप इसे अपनी सुविधा के लिए लिखना चाहते हैं तो आप अपने कागज और पेन तैयार रखिए और लिखते भी जाइए। रूपरेखा इस प्रकार है। पहला मुख्य खंड जो 1 से 11 अध्याय हैं, जिसमें पहला है पृथ्वी पर पाप का प्रवेश। पृथ्वी पर पाप का प्रवेश जो उत्पत्ति 1 से 11 अध्याय में हमें मिलता है। और इस मुख्य खंड के अंतर्गत हम छोटे छोटे विभाजनों को देखेंगे जो 1 से 11 अध्याय के विभाजन हैं। इसे हम 4 मुख्य भागों में बांटते हैं और इसके अंदर कई छोटे छोटे भाग भी होंगे। और इसमें पहला मुख्य भाग है सृष्टि यानी रचना। उत्पत्ति के 1 और 2 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और इसके अंदर पहला छोटा भाग है जिसमें आकाश और पृथ्वी का वर्णन है। यह उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 पद में मिलता है। शब्द सृष्टि इस अध्याय में सिर्फ 3 बार प्रयोग में लाया गया है, जो 1, 21 और 27 पद में पाया जाता है। और दूसरा खंड है या भाग है पृथ्वी का वेडोल और वीरान होना, जो हमें उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 पद में मिलता है। और तीसरा भाग है पुनर्रचना का वर्णन, यह हमें उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 पद से लेकर 2 अध्याय के 25 पद में मिलता है। और इसी पुनर्रचना के अंदर में और 8 छोटे विभाजन हैं जो 1 अध्याय के 3 पद से 2 अध्याय के 25 पद को बांटती है। पहला विभाजन है इस प्रकार से, पहला दिन परमेश्वर ने उजियाला को बनाया, जिसका वर्णन उत्पत्ति 1 अध्याय के 3 पद से 5 पद में मिलता है। और दूसरा है दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिसे हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 6 पद से 8 पद में पाते हैं। तीसरा है तीसरा दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि और वनस्पति उत्पन्न किए, इसे हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 9 पद से 13 पद में इसका वर्णन पाते हैं। चौथा है चौथा दिन सूर्य चंद्रमा और तारागणों का बनाया जाना, उत्पत्ति 1 अध्याय के 14 पद से लेकर 19 पद में इसका वर्णन मिलता है। और पांचवा है पांचवा दिन परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया, और इसका वर्णन हमें उत्पत्ति एक अध्याय के 20 पद से लेकर 23 पद में मिलता है। छठवां दिन सृष्टि की जनन क्षमता और मनुष्य की सृष्टि का वर्णन हमें उत्पत्ति एक अध्याय के 24 पद से 31 पद में मिलता है। और सातवां दिन विश्राम का दिन, इस दिन को परमेश्वर ने विश्राम के दिन के रूप में ठहराया, क्योंकि वह परमेश्वर 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। इसका वर्णन हमें उत्पत्ति 2 अध्याय के 2 पद से लेकर 3 पद में मिलता है। और अब अंतिम विभाजन है 8वां, मनुष्य की सृष्टि का संक्षेप में दोहराना। मनुष्य की सृष्टि का संक्षेप में दोहराना, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 4 पद से 25 पद में मनुष्य की सृष्टि अर्थात आदम और हवा की सृष्टि का वर्णन है कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की। मित्रों, अब तक जो विभाजन हमने देखे हैं ये मुख्य विभाजन से नहीं परंतु छोटे विभाजन के भाग से हम देख रहे थे, लेकिन अब हम मुख्य विभाजन के मुख्य भाग के दूसरे पॉइंट को देखेंगे। आप इसे बी कहकर लिख सकते हैं। तो आइए देखें कि इसमें क्या विभाजन है। बी में है पतन, जिसमें उत्पत्ति अध्याय 3 और 4 में मनुष्य के पतन का वर्णन है। तो आइए इसके भागों को देखें, और इसके जो छोटे भाग हैं इस प्रकार से हैं। संदेह करना और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना या उसकी आज्ञा को ना मानना है। और दूसरा भाग है पाप का फल। इसके बारे में हमें नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 19 पद में यह जानकारी मिलती है। क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी गवाही और निंदा निकलती हैं। पाप का फल या परिणाम आपके समक्ष है। अब अगला भाग सी है जो जल प्रलय है। उत्पत्ति 5 से 9 अध्याय में इसका वर्णन हमें मिलता है। जल प्रलय के अंतर्गत 5 छोटे भाग भी हैं, तो आइए हम इन्हें एक एक करके देखें। इसके छोटे भाग का पहला है आदम की वंशावली की पुस्तक। सेत से मनुष्य के इतिहास की शुरुआत होती है, और अध्याय 5 में स्मृति लेख भी मिलता है। और दूसरा भाग है जल प्रलय से पहले की सभ्यता, जल प्रलय का कारण और जहाज का बनाया जाना उत्पत्ति के 6 अध्याय में मिलता है। और तीसरा भाग है न्याय का जल प्रलय, उत्पत्ति 7 अध्याय में है। और चौथा जल प्रलय के बाद की सभ्यता, जल प्रलय के बाद की घटनाओं का वर्णन उत्पत्ति अध्याय 8 में मिलता है। और पांचवा भाग जल प्रलय के बाद का जीवन अर्थात नई शुरुआत का वर्णन उत्पत्ति के 9 अध्याय में मिलता है, जो जल प्रलय के बाद नई शुरुआत या जिंदगी का वर्णन करता है। अब इसे अगले और अंतिम भाग को देखेंगे जो डी में है बाबुल का मीनार या बुर्ज और भाषा की गड़बड़ी। उत्पत्ति उसके 10 और 11 अध्याय में मिलता है। इसे 2 छोटे भागों में बांटा गया है। पहला है आचार शास्त्र और नूह के पुत्र, उत्पत्ति अध्याय 10 में इसका वर्णन मिलता है। और दूसरा छोटा भाग है बाबुल का मीनार, उत्पत्ति अध्याय 11 में इसका वर्णन है। यह पेंतिकोस्त के दिन के साथ मेल नहीं खाता है, अर्थात विषमता का विरोध है। मित्रों, हमने उत्पत्ति की पुस्तक को 2 मुख्य खंडों में विभाजित किया है, और जिसमें से हमने अभी पहले खंड को देखा जो अध्याय 1 से 11 तक था। परंतु अब हम दूसरे खंड को देखेंगे जिसमें 12 से 50 अध्याय हैं। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक की रूपरेखा के दूसरे मुख्य खंड को देखें, और इसे हम एक बड़े 2 के रूप में लेते हैं, यानी कि दूसरा खंड। इसका पहला मुख्य खंड है सारे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के आने की तैयारी। फिर से सुने, सारे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के आने की तैयारी। इसका वर्णन हमें उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर 50 अध्याय में मिलता है। अब हम इसे 4 मुख्य भागों में विभाजित करेंगे, और उसके अंदर कई छोटे भाग भी हम करेंगे। तो आइए हम इस रूपरेखा के पहले मुख्य भाग को देखें। आप इसे ए लिख सकते हैं, ए अब्राहम का विश्वास। ये हमें उत्पत्ति उसके 12 अध्याय से 23 अध्याय में मिलता है। विश्वास की बढ़ोतरी परमेश्वर के 7 बार प्रकटीकरण के द्वारा। इसके अंतर्गत 12 छोटे भाग हैं, तो आइए हम उन्हें एक एक करके देखें। पहला है अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट और वायदा का मिलना और उसका प्रतिउत्तर विश्वास की भूल के द्वारा देना। यह उत्पत्ति 12 अध्याय में हमें मिलता है। और दूसरा अब्राहम का मिश्र देश से कनान देश को लौटना, लूत से अलग होना और परमेश्वर का अब्राहम पर तीसरी बार प्रकट होना, उत्पत्ति के 13 अध्याय में मिलता है। और तीसरा पहला युद्ध अब्राहम का लूत को छुड़ाना, पहला पुरोहित अब्राहम का मलकीसेदेक द्वारा आशीष पाना, ये सब उत्पत्ति 14 अध्याय में पाए जाते हैं। और चौथा है परमेश्वर का अधिक स्पष्टता से अब्राहम पर प्रकट होना, अपने वायदों को पुनः पुष्ट करना, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय में वर्णन है। पांचवा साराय और अब्राहम का अविश्वास, इश्माइल का जन्म, उत्पत्ति 16 अध्याय में मिलता है। छठवां परमेश्वर का अब्राहम के साथ वाचा बांधना, अब्राहम से अब्राहम का होना उसके संतान प्राप्ति के वायदे को स्पष्ट करता है, इसका वर्णन उत्पत्ति 17 अध्याय में मिलता है। सातवां परमेश्वर का अब्राहम को सदोम नगर के विनाश को प्रकट करना, वहां के लोगों की तरफ से अब्राहम का विचवई करना, उत्पत्ति के 18 अध्याय में मिलता है। आठवां स्वर्गदूतों का लूत को चेतावनी देना, लूत का सदोम नगर को छोड़ना, परमेश्वर द्वारा समतल वाले नगरों का विनाश करना, उत्पत्ति के 19 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। नौवां अब्राहम का साराय को बहन कहने का पाप फिर से गरार नगर में दोहराया जाना, उत्पत्ति के 20 अध्याय में मिलता है। दसवां इसहाक का जन्म, हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना, अब्राहम का बेर्शेबा में होना, उत्पत्ति के 21 अध्याय में मिलता है। ग्यारहवां इसहाक को बलि करने के लिए अब्राहम को परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिलना, उसे रोकना, अब्राहम के साथ दोबारा वाचा बांधना, उत्पत्ति के 22 अध्याय में मिलता है। और बारहवां साराय की मृत्यु, अब्राहम का मकपेला की गुफा समेत भूमि को कब्रिस्तान के लिए खरीदना, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 23 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। मित्रों अब हम मुख्य खंड के 4 भागों में से दूसरे भाग को देखेंगे और इसके अंदर भी कई छोटे भाग हैं। पहले मुख्य भाग को हम ए कहते हैं और दूसरे भाग को बी। तो आइए देखें भाग बी। इसहाक प्रिय पुत्र के बारे हमें उत्पत्ति के 24 अध्याय से लेकर 26 अध्याय में वर्णन मिलता है। दुल्हन का चुनाव करना, यीशु मसीह और कलीसिया के साथ तुलना करना है। हम इसके अंदर 3 छोटे भागों को पाते हैं और इसमें पहला है अब्राहम इसहाक के लिए दुल्हन लाने के लिए नौकर भेजना, रेबेका का नौकर के साथ आना, इसहाक की पत्नी बनना, ये सब उत्पत्ति की पुस्तक के 24 अध्याय में मिलता है। और दूसरा है अब्राहम की मृत्यु, एसाव और याकूब का जुड़वा जन्म इसहाक और रेबेका के द्वारा, एसाव का अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेचना, उत्पत्ति के 25 अध्याय में मिलता है। और तीसरा परमेश्वर का इसहाक से वाचा बांधना या पक्का करना, इसहाक का पत्नी के रिश्ते को बहन कहकर बताना, इसहाक का गरार नगर में कुआं खोदना, ये उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26 अध्याय में मिलता है। मित्रों अब हम अगले भाग सी को देखेंगे जिसके अंदर भी कई छोटे भाग हैं। तो आइए देखें भाग सी, याकूब, जिसके बारे में हम उत्पत्ति के 27 से 36 अध्याय में पाते हैं। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है वह उसे शुद्ध करता है। इसके अंतर्गत 10 छोटे भाग पाए जाते हैं और इसमें पहला है एसाव के लिए ठहराए गए आशीष को प्राप्त करने के लिए याकूब और रेबेका ने उसका अनदेखा किया, हमें यह उत्पत्ति के 27 अध्याय में मिलता है। दूसरा याकूब का घर छोड़ना, बेतेल में परमेश्वर का उससे मिलना अब्राहम के साथ की गई वाचा को मजबूत करता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय में इसके बारे वर्णन मिलता है। तीसरा याकूब का हारान में पहुंचना, राहेल और अपने मामा लाबान से मिलना, 7 सालों तक राहेल को पाने के लिए काम करना, लिया को शादी करके धोखा खाना, उत्पत्ति के 29 अध्याय में मिलता है। चौथा याकूब के पुत्रों का जन्म, याकूब का लाबान के घर को छोड़ने की तैयारी, याकूब का प्रदेश छोड़ने का सौदा करना, इसका वर्णन हमें उत्पत्ति की पुस्तक के 30 अध्याय में मिलता है। पांचवा याकूब का हारान से भागना, लाबान को उसको पहुंचाना, मिस्पा में याकूब और लाबान का वाचा बांधना, इसका वर्णन उत्पत्ति 31 अध्याय में मिलता है। अब छठवां याकूब के जीवन में संकट का आना, पेनियल में एक पुरुष से पौ फटने तक लड़ते रहना, याकूब का नाम इसराइल में बदलना, यह उत्पत्ति के 32 अध्याय में मिलता है। सातवां याकूब का एसाव से मिलना, याकूब का शकेम की यात्रा करना, ये हमें उत्पत्ति 33 अध्याय में मिलता है। आठवां याकूब के परिवार में कलंक लगना, दीना का भ्रष्ट किया जाना, उसके भाइयों के द्वारा हामोर के पुरुषों को मारकर बदला चुकाना, इसका वर्णन उत्पत्ति के 35 अध्याय में पाया जाता है। नौवां याकूब का बेतेल को लौटना, बेतलेहम में राहेल का मृत्यु होना, इसहाक का हेब्रोन में मरना, और इसका वर्णन उत्पत्ति 35 अध्याय में मिलता है। दसवां एसाव का परिवार जो एदोम जाति बना, इसका वर्णन उत्पत्ति के 36 अध्याय में मिलता है। मित्रों अब हम आखिरी मुख्य भाग डी को देखेंगे, जिसके अंदर भी कई छोटे भाग पाए जाते हैं, तो आइए हम इसे आरंभ करें। डी में यूसुफ का कष्ट और महिमा, उत्पत्ति के 37 से 50 अध्याय में पाया जाता है। आइए हम इसके अंतर्गत छोटे भाग को देखें, जिसमें पहला है याकूब का कनान देश में निवास करना, यूसुफ का दास होने के लिए बेचा जाना, यह उत्पत्ति के 37 अध्याय में मिलता है। दूसरा यहूदा का पाप और शर्म, उत्पत्ति के 38 अध्याय में मिलता है। तीसरा मिश्र देश में अपमानित होना, उत्पत्ति के 39 और 40 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। इसके अंदर दो छोटे खंड हैं, ए पोतीफर के घर में सर्वेक्षक होना, पोतीफर की पत्नी द्वारा परीक्षा में डालना, जेल में डाला जाना, इसका वर्णन हमें उत्पत्ति 39 अध्याय में मिलता है। बी यूसुफ का जेल में होना, प्रधान साकी और प्रधान रसोई के स्वप्नों का अर्थ बताना, उत्पत्ति के 40 अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता है। अब चौथा मिश्र देश में उन्नति, उत्पत्ति 41 से 48 अध्याय में मिलता है। इसमें भी हम छोटे खंडों को देखेंगे, जिसमें ए यूसुफ द्वारा फिरौन के स्वप्न का अर्थ बतलाना, मिश्र देश का अधिकारी बनना, आसनत से विवाह करना, मनश्शे और एप्रेम का जन्म, हमें उत्पत्ति 41 अध्याय में मिलता है। बी याकूब का अपने 10 पुत्रों को मिश्र देश में अनाज के लिए भेजना, यूसुफ के साथ मुलाकात होना, शमौन का बंदी होने के लिए छोड़ा जाना, अनाज और रुपयों के साथ घर वापस आना, इसका वर्णन हमें उत्पत्ति के 42 अध्याय में मिलता है। सी याकूब का अपने पुत्रों को बिन्यामीन के साथ फिर से मिश्र देश में भेजना, यूसुफ का अपने भाइयों के लिए मनोरंजन करना बिना अपने को बताए कि वह कौन है, यह सब हमें उत्पत्ति 43 अध्याय में मिलता है। डी यूसुफ का अपने भाइयों को घर भेजना, प्रबंधक के द्वारा कैद किया जाना, बेंजामिन के बोरी में कटोरा का मिलना, बेंजामिन के लिए यहूदा का गिड़गिड़ाना, इसका वर्णन उत्पत्ति 44 अध्याय में मिलता है। ई यूसुफ का अपनी पहचान बताना, भाइयों के साथ प्रेममय पुनर्मिलन करना, याकूब और उसके सारे घराने को मिश्र देश में बुलाया जाना, उत्पत्ति के 45 अध्याय में मिलता है। एफ याकूब का परिवार के 70 लोगों के साथ मिश्र देश में प्रस्थान करना, याकूब और यूसुफ का पुनर्मिलन, उत्पत्ति के 46 अध्याय में मिलता है। जी याकूब और यूसुफ के भाइयों का गोशेन नगर में बसना, फिरौन के सामने लाया जाना, अकाल ने मिस्र के लोगों को जमीन बेचने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे यूसुफ फिरौन के लिए खरीदा। यूसुफ ने शपथ खाई कि वह याकूब को कनान देश में दफनाएगा। ये सब कुछ उत्पत्ति के 47 अध्याय में वर्णन किया गया है। हेच याकूब अपनी मृत्यु सहया पर यूसुफ के पुत्रों को आशीष देते हैं। यह हमें उत्पत्ति के 48 अध्याय में मिलता है। यहाँ पर यह छोटा भाग समाप्त होता है और हम डी के 5वें भाग को देखेंगे, जो इस बड़े खंड का अंतिम भाग है। 5वां भाग, याकूब और यूसुफ का मृत्यु और उनका दफनाया जाना, उत्पत्ति के 49 और 50 अध्याय में मिलता है। इसमें दो छोटे भाग हैं। ए, याकूब का मृत्यु शय्या पर से अपने 12 पुत्रों को आशीष देना, उनके लिए भविष्यवाणी करना। यह उत्पत्ति के 49 अध्याय में पाया जाता है। बी, याकूब की मृत्यु और कनान देश में दफनाया जाना, यूसुफ की मृत्यु और मिस्र देश में दफनाया जाना। यह हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50 अध्याय में मिलता है। मित्रों, यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक की रूपरेखा समाप्त होती है और मैं विश्वास करता हूँ कि यह रूपरेखा निश्चित रूप से आपको उत्पत्ति की पुस्तक को समझने में सहायक सिद्ध होगी। कृपया आप अपने बाइबल अध्ययन में इस रूपरेखा का अनुसरण अवश्य करें और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले कार्यक्रम में हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक प्रभु आप सबके साथ रहे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।